नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ जी राजा रमन। राजा रमन जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
थैंक यू प्रशांत।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में ईशा रानी बरुआ और पिचमोन ओपाटनीपुत आमने सामने। इंडियन ओपन स्क्वैश के सेमीफाइनल में अमीश ने राजचंद्रन और अभय सिंह का मुकाबला जारी। महिला सेमीफाइनल में अनाहत सिंह का सामना तन्वी खन्ना से। मानव ठक्कर और यशस्विनी घोड़पड़े ने सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता। और कैमरन मैकॉय ने 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में नया कीर्तिमान स्थापित किया। शुरुआत करते हैं बैडमिंटन में। ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में नोजोमी ओकुहारा ने तन्वी शर्मा को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। तन्वी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नात्सुकी निदारा को 21-14 से हराया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आज ईशा रानी बरुआ और पिचमोन ओपाटनीपुत आमने सामने होंगी। उम्मीद की जा रही थी कि तन्वी आज जीतकर फाइनल में पहुंचेंगे, लेकिन अच्छा प्रदर्शन किया नोजोमी ने।
तन्वी का भी प्रदर्शन काबिले तारीफ है। सेमीफाइनल पहुंचना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी आप अपना नाम कमाने लगे हैं
जी।
तो मुझे लगता है कि कम नहीं आंकना चाहिए, बट जिस तरीके से नाओमी ने खेला है और फिर जीता है
जी,
तन्वी को शायद मुश्किल का सामना करना पड़ा। यहां से उभर कर आएगी। आई थिंक शी गिव्स अस होप कि आगे भारत का बैडमिंटन का भविष्य उज्जवल ही रहेगा। सिंधु के बाद कौन वाले सवाल का जवाब अभी धीरे धीरे मिलने लगा है
जी। और ईशा रानी बरुआ भी एक अच्छी खिलाड़ी, उनसे भी उम्मीदें की जाएंगी कि 300 का खिताब जीतें, क्योंकि 300 हो गया या 100 का जो टूर्नामेंट होता है, इन सबको जीत करके ही आगे चल के आप 1700 में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आप तैयार होते हैं।
आपका रैंकिंग बढ़ता है और फिर आपको अनुभव भी मिलता है। तो 100 हो या 300 हो या 750 वाला टूर्नामेंट हो, बड़े प्लेयर शायद नहीं दिखेंगे इधर, लेकिन बड़े बनने का एक मौका मिलता है हमारे कई खिलाड़ियों को
जी। और श्रोता आपको बता दें कि तन्वी शर्मा ने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी थी। जाके शुरुआत कर लेते हैं स्क्वैश से। इंडियन ओपन स्क्वैश पुरुष वर्ग में अमीश एन राजचंद्रन और अभय सिंह का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अभय ने 2-1 की बढ़त बना ली है। कांटेदार मुकाबला जारी है। चंद्रन की बात करें तो अच्छी वापसी की उसने भी।
चौथे गेम में जो मलेशियन प्लेयर है चंद्रन, उन्होंने जरूर वापसी की है, लेकिन यहाँ पे अभय की भी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि वो 2-6 से पिछड़े हुए थे चौथे गेम में, वहां से फिर लीड लिया है, मैच पॉइंट है उनके पास। देखना यह होगा कि यह मैच पॉइंट को खत्म यहीं करते हैं कि पांचवें गेम तक जाता है।
वहीं पुरुष वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में आज वीर चोटरानी का मुकाबला संजय जीवा से होगा। महिला वर्ग के सेमीफाइनल में आज अनाहत सिंह का मुकाबला तन्वी खन्ना से होगा। सबकी नजरें होंगी अनाहत पर।
बिल्कुल, युवा खिलाड़ी है, 17-18 साल की है और पिछले साल जीती थी, डिफेंडिंग चैंपियन है और टॉप सीडेड प्लेयर है
जी।
तो उम्मीद यही रहेगी कि दोबारा जीतेगी, लेकिन अनाहत जो मैच्योरिटी पिछले साल डेढ़ साल में दिखाई है काबिले तारीफ। आई थिंक शी विल बी वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लेयर्स इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड। आज की तारीख में वर्ल्ड नंबर 20 पर है और बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो वह उस स्तर तक पहुंचते हैं। तो अनाहत का उम्र अभी कम है, एक्सपीरियंस के साथ और बेहतर खेलने लगेंगे।
और श्रोता आपको बता दें कि अनाहत ने मलेशिया की सहवित्रा कुमार पर 11-2, 11-6, 11-4 के शानदार जीत दर्ज की, जबकि तन्वी ने चौथी वरीयता प्राप्त आइना अमनी को 3-1 से हराया था। भारत के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में स्क्वैश को शामिल किए जाने को ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा कि खेल के विकास के लिए बेहतर कोचिंग और इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की जरूरत है। अच्छा एक एडिशन है अगर 2028 के ओलंपिक की बात करें तो, इससे पहले स्क्वैश का भी था नहीं तो ओलंपिक का पार्ट।
भारत के लिए अच्छी बात है क्योंकि एक लेगेसी है भारत में। सौरव खुद बहुत बेहतरीन प्लेयर रह चुके हैं, शायद उनके लिए ओलंपिक गेम देर से आई है, लेकिन अनाज जैसे प्लेयर के लिए या जोशना चिनप्पा जैसे प्लेयर के लिए जिनका भी उम्र हो गया है लेकिन वो लगातार अच्छा प्रदर्शन खेलता है, अब यहाँ पे क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है इंडियन ओपन में, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारे अच्छा प्रदर्शन कर दिखा सकते हैं। हालांकि कॉमनवेल्थ के कई सारे टीम्स हैं बहुत जो स्ट्रांग होंगे, लेकिन भारत के पास एक लेगेसी है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे युवा खिलाड़ियों पे पड़ता है।
चर्चा कर लेते हैं टेबल टेनिस पर। पेट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड के मानव ठक्कर और यशस्विनी घोड़पड़े ने आज सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अपना पहला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
पुरुषों के फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त मानव ने अपेक्षानुरूप प्रदर्शन करते हुए रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड के जीत चंद्र पर 4-1 की शानदार जीत हासिल की। वहीं महिला सिंगल्स के फाइनल में आखिर तक रोमांच बना रहा। यशस्विनी ने फाइनल में पीएसपीबी की युवा खिलाड़ी सिंड्रेला दास पर 4-3 से जीत हासिल करके खिताब अपने नाम किया। मिक्स्ड डबल्स फाइनल में अंकुर भट्टाचार्य और सुहाना सैनी ने अनिकेत बोस और संप्रीति रॉय को 5 गेम के रोमांचक मुकाबले में 3-2 से मात दी। इस बीच दिव्यांशी भौमिक को सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने के लिए डी विश्व ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। दिव्यांशी ने एशियाई युवा चैंपियनशिप में अंडर 15 सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता था। दिव्यांशी ने पिछले वर्ष ITTF युवा विश्व चैंपियनशिप में अंडर 19 का खिताब भी अपने नाम किया था। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
वहीं कर्नाटक के तुमकुरु में 4-10 मई तक पहला ITF महिला विश्व टेनिस टूर W35 टूर्नामेंट खेला जाएगा। टूर्नामेंट तुमकुर यूनिवर्सिटी परिसर स्थित जिला टेनिस स्टेडियम में आयोजित होगा। प्रतियोगिता में भारत के शीर्ष 32 और भावी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी क्वालिफाइंग दौर में भाग लेंगे। एक अच्छा टूर्नामेंट, 2 दशक के बाद ये आयोजित हो रहा है तो भावी खिलाड़ियों के लिए काफी अहम होगा।
टुमकुर में ऑल इंडिया टूर्नामेंट होता था, अब वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हो रहा है। ये दिखाता है कि भारत में अभी टेनिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने टूर्नामेंट्स हम आयोजन करने लगे हैं। ITF के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, WTA के हो रहे हैं और ATP का भी टूर्नामेंट होता है, तो टेनिस में हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम टूर्नामेंट जरूर आयोजन करते हैं, लेकिन इसका फायदा हमारे प्लेयर्स को उठाना होगा। रैंकिंग बढ़ाने का एक बहुत जबरदस्त अवसर बनता है, यहाँ पे जीतना चाहिए उनको। और हालांकि ऐसे टूर्नामेंट जीतने से 10 WTA पॉइंट मिलते हैं लड़कियों को या 10 ATP पॉइंट मिलते हैं लड़कों को, दे शुड मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी।
और श्रोता आपको बता दें कि तुमकुरु में आखिरी बार 2003 में ATP चैलेंजर टूर्नामेंट खेला गया था जिसमें रोहन बोपन्ना और प्रकाश अमृता जैसे खिलाड़ियों ने भाग लिया था। चर्चा कर लेते हैं तैराकी पर। ओलंपिक और विश्व चैंपियन तैराक कैमरन मैकॉय ने कल पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल में 17 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
शेंजेन में चाइना ओपन में ऑस्ट्रेलिया के 31 वर्षीय तैराक कैमरन ने 20.88 सेकंड का समय दर्ज करते हुए नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। कैमरन ने ब्राजील के खिलाड़ी सेसार सीएलओ के पिछले रिकॉर्ड से 0.03 सेकंड कम का समय लिया। सीएलओ ने 2009 में तैराकी के सुपर सूट युग के दौरान 20.91 सेकंड में विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इन प्रतियोगिता में खिलाड़ी की क्षमता बढ़ाई जाती थी जिसके कारण 2009 में लगभग 150 विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त हुए थे। कैमरन ने कल एकाग्रता और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
चर्चा कर लेते हैं गोल्फ पर। हीरो इंडियन गोल्फ ओपन 26 मार्च से 29 मार्च तक DLF गोल्फ और कंट्री क्लब में आयोजित होगा। इस प्रतियोगिता में दुनिया के शीर्ष 100 खिलाड़ियों में से 5 और विश्व टूर के कई पूर्व चैंपियन भाग लेंगे। सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की एक रिपोर्ट।
इस प्रतियोगिता में विश्व रैंकिंग में 22वें स्थान पर काबिज और PGA टूर पर हाल ही में जीत दर्ज करने वाले अक्षय भाटिया और 2018 ओपन चैंपियन और 3 बार के राइडर कप विजेता इटली के फ्रांसिस्को मोलिनारी भाग ले रहे हैं। शीर्ष 100 में खिलाड़ियों में 69वें नंबर पर कासे जार्विस, 74वें स्थान पर एल्विस स्माइली, 85वें स्थान पर डेविड पुइग और 89वें नंबर पर ट्रिस्टन लॉरेंस काबिज है। भारतीय खिलाड़ियों में 2 बार के DP विश्व टूर विजेता शुभंकर शर्मा, 2025 PGTI ऑर्डर ऑफ मेरिट विजेता युवराज संधु, मनु गंडास, ओम प्रकाश चौहान और वीर अहलावत शामिल है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
कर लेते हैं फुटबॉल पर। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में केरला ब्लास्टर्स का मुकाबला पंजाब एफसी से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब एफसी ने 3-0 की बढ़त बना ली है। वहीं कल हुए मुकाबले में ओडिशा ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को हराया था। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
राहुल केपी के 2 गोल की मदद से ओडिशा एफसी ने कल इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी पर 4-1 से बड़ी जीत दर्ज की। ओडिशा एफसी की ओर से राहुल केपी ने 6ठे और 65वें मिनट में गोल किए। इसके अलावा शुभम भट्टाचार्य ने 24वें और बेकी ओरम ने 68वें मिनट में गोल दाग कर ओडिशा एफसी की बड़ी जीत सुनिश्चित कर दी। रविवार को पहले मुकाबले में चेन्नई एफसी का सामना शाम 5 बजे से गोवा एफसी से होगा। वहीं दूसरे मुकाबले में कल इंटर काशी का सामना शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु से होगा। प्रतियोगिता में गोवा 4थे और चेन्नई 11वें स्थान पर है। वहीं इंटर काशी 9वें और बेंगलुरु 6ठे स्थान पर है। भूपेंद्र सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
हालांकि अभी अगर टेबल की बात करें तो मुंबई सिटी टॉप पर है, मोहन बगान दूसरे स्थान पर है 4 जीत के साथ और जमशेदपुर ने भी 6 में से 4 जीत दर्ज किया। मोहन बगान जो है पूर्व चैंपियन में, तो लगातार उनका अच्छा प्रदर्शन अब तक जारी है।
बिल्कुल है, लेकिन मुंबई सिटी अभी फिलहाल टॉप में है, लेकिन अभी टूर्नामेंट आधा भी नहीं हुआ है, तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है। ऐसे टूर्नामेंट्स में जो एकदम शॉर्ट टर्म टूर्नामेंट है, बहुत कम मैचेस है, ये नहीं कि पूरा लंबा सीजन खेल रहे हैं। अब की बार टूर्नामेंट हो रहा है, यही बड़ी बात है। प्लेयर्स खुश होंगे, कुछ टीम्स खुश होंगे, लेकिन मुंबई सिटी और मोहन बगान आज की तारीख में शायद ये दो टीम है जिन पे सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन पंजाब एफसी अभी 3-0 से अगर आगे हैं तो उनका तीसरा जीत होगा, अगर जीत जाते हैं तो तीसरा जीत होगा, वो भी मोहन बगान के करीब पहुंच ही रहे।
वहीं माइका हमानो के पहले हाफ में किए गए गोल की बदौलत जापान ने आज मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर महिला एशियाई कप फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। जापान ने 2014 और 2018 में भी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगातार महिला एशिया कप जीता था। एशियाई कप से 6 टीमें अगले साल ब्राजील में होने वाले महिला विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। लगातार जापान का अच्छा प्रदर्शन है, तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया को मात दी उन्होंने।
वर्ल्ड कप खेलती है जापान की टीम, काफी स्ट्रांग टीम है, और हालांकि ऑस्ट्रेलिया में जाके वहां उनको हराना बड़ी बात है, बट जापान इज अ वर्ल्ड क्लास टीम, एशिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम लगातार रही है, तो इट्स नॉट अ सरप्राइज दैट दे हैव वन द एशिया कप।
कर लेते हैं क्रिकेट पर। विश्व चैंपियन भारत 26 और 28 जून को आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 मैच खेलेगा। बीसीसीआई ने आज ये जानकारी दी। दोनों मैच बेलफास्ट में होंगे, जहां भारतीय टीम 2007 के बाद पहली बार खेलेगी। भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 1 टेस्ट और 3 मैच की वनडे श्रृंखला के बाद इंग्लैंड में से 19 जुलाई तक 5 T20 और 3 वनडे भी खेलेगी। अभी हमने हालिया विश्व T20 वर्ल्ड कप में देखा कि कैसे नेपाल हो गई, आयरलैंड, तो चलो इनसे मुकाबला होना है, लेकिन इस तरह की टीमों ने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। जिम्बाब्वे ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को हराया, तो एक अच्छा सीरीज होने की उम्मीद है।
आयरलैंड तो काफी टाइम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेल रही है, उनके कुछ खिलाड़ी अच्छे भी है जी। बड़े टीम्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जाके छोटी टीम्स को प्रोत्साहन देना। भारत जैसा टीम जाके वहां पे खेलेगा, हालांकि मुझे नहीं लगता हमारा फुल स्क्वाड खेलेगा, ए टीम हमारा बेस्ट टीम खेलेगा उधर, हमारा सेकेंड स्ट्रिंग टीम भी काफी स्ट्रांग होगा और आयरलैंड के लिए एक अच्छा एक्सपोजर होगा।
और श्रोता आपको बता दें कि भारतीय टीम ने पिछले 8 साल में 3 बार 2018, 2022 और 2023 में आयरलैंड का दौरा किया था। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि इंडियन ओपन के फाइनल में अभय ने जगह बना ली, एक अच्छी खबर। स्क्वाश के नजर से देखें तो अभय का अच्छा प्रदर्शन रहा सेमीफाइनल में,
एक्सपेक्टेड है क्योंकि टॉप सीडेड है जी। और अपने घर में हो रहा है, तो जो क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया का ग्लास कोर्ट है वहां पे लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा भारतीय खिलाड़ियों को, और एक्सपेक्टेड था कि वो 3-0 से जीतेंगे जी। एक गेम हारना पड़ा उनको, तो 3-1 से वो आगे फाइनल में पहुंचे
जी। और श्रोता समय हो चला आपसे विदा लेने का। राजा रमन जी आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
थैंक यू प्रशांत।
और श्रोताओं इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।